ओम शांति। शिवानी दीदी का सेशन अटेंड किया सबने, मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब ने बहुत कुछ उस सेशन से लिया है जो हमको लेके आगे बढ़ना है, और यहां से जब वापस जाएंगे उसे अपने जीवन में साथ में लेके जाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि बातें तो हम बहुत अच्छी अच्छी सुन रहे हैं यहां पे, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बातें सिर्फ ज्ञान सरोवर के दायरे तक सीमित हैं और यहां से शायद हम जब अपनी वर्क प्लेस पर जाएंगे तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में या इन चीजों को यूज करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? बहुत लोग। करने में मुश्किल आएगी, या हमारा वातावरण या हमारा वायुमंडल या हमारे जो कलीग्स हैं वो हमें करने नहीं देंगे इस चीज को, या हम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा लोग, कोई ऐसा सोचता है कि ये करना असंभव है? कोई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये करना असंभव है वर्क प्लेस में हमारे? नहीं, कोई नहीं सोचता। तो आज ये एक सत्र, एक बहुत स्पेशल सत्र है कि हम ये तो सोचते हैं कि ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मुश्किल तो होने वाली है, इतना आसान तो नहीं होने वाला। आज हमारे बीच में कुछ बहुत ही एमिनेंट फिगर्स हैं, बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटीज हैं जिनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने इन वैल्यूज को, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके सर्विस में रहते हुए और बड़े बड़े अनुभव इनको हुए हैं, तो वो आज उन अनुभवों को हमारे साथ आत्मसात करेंगे जिससे हम सबके लिए प्रेरणा होगी कि इन चीजों को हमें अपने वर्कप्लेस पे वापस जाके कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इसको इफेक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा स्टेज पे बीके शैलेंद्र भाई को, जो कि हमें इस जर्नी में ले जाएंगे साथ में। हमारे बीके शैलेंद्र भाई समर्पित भाई हैं यहाँ ज्ञान सरोवर के, और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के बहुत ही अभिन्न अंग हैं, और आईटी विंग देखते हैं यहाँ का, एसएसडब्ल्यू का, जो आपने वीडियो भी देखा है जो अभी प्ले हुआ था, वो वीडियो भी शैलेंद्र भाई का बनाया हुआ है। तो जोरदार तालियां शैलेंद्र भाई के लिए। शैलेंद्र भाई हमें इस जर्नी पे ले जाएंगे क्योंकि ऐसे जो अभी महान हस्तियां जो आने वाली हैं स्टेज पे, उनसे प्रश्नोत्तर करके और हम सबको प्रेरणा दिलाएंगे कि हम सबको भी जीवन में अपने और वर्क प्लेसेस में अपने कैसे इस ज्ञान को धारण करना है और कैसे अपने जीवन को संवारना है। तो मैं स्टेज पे इन्वाइट करूंगा ब्रिगेडियर हरबीर सर को। ब्रिगेडियर हरबीर सर आर्मी के एक वेटरन हैं और ये कारगिल वॉर के हीरो भी हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी हरबीर सर से उनके अनुभव सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मौत के मुंह से कैसे निकल के आए हैं इस ज्ञान मार्ग से। मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पे डीआईजी वीरेंद्र सर को कि प्लीज स्टेज पे आए। सर वेस्ट बंगाल के डीआईजी थे और इनके पास भी बहुत वेस्ट बंगाल के डीजी थे और सर के भी बहुत ही अनूठे अनुभव, बहुत बढ़िया अनुभव हम सुनेंगे। और साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा कर्नल विकास चौहान को। इनसे आप सब मिले हुए हैं लेकिन इनके अनुभव अभी तक सुने नहीं है हमने, और एक से एक बेहतरीन अनुभव है इनके पास में भी। तो ओवर टू शैलेंद्र भाई।
ओम शांति एवरीवन। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और ये जो सत्र है, जैसे सर ने बताया, ये सत्र है हमें प्रेरणा देने वाला ऐसे अनुभव का, जिन लोगों को मैं जानता हूँ बहुत सालों से, जिन्होंने अपने कैरियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे मिरेकल किए हैं। तो ये आज जो आप सेशन है, ये चमत्कारों का सेशन है। हर कोई जो यहाँ पे बैठा है उनके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, बहुत सारी परमात्मा की मदद है, और बहुत सारी उनके जीवन में जो संयम नियम तो होता ही है, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे जो उनके कार्य क्षेत्र में उनको जो सफलता मिली है, तो ऐसे अनुभवों को हम सुनेंगे। तो एक बार मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, महान भाव बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हम इनके जीवन के अनुभव सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीरेंद्र सर हैं, जो वेस्ट बंगाल कैडर के अधिकारी रहे हैं। 1985 बैच आपकी कमीशन हुई, तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने डीजी और आईजीपी जो लगभग बंगाल के पुलिस महानिदेशक रहे, और उसके बाद 2023 में आपने स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो ऐसी महान विभूति के लिए हम एक बार फिर तालियां बजाते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, लगभग पिछले 12 सालों से 2013-14 से राजयोग का डेली अभ्यास करते हैं, तो इनके जीवन में प्रोफेशनल भी और ईश्वरीय अनुभव दोनों का हम अनुभव सुनेंगे। हमारे बीच में हैं हरवीर सर। जैसे सर बता रहे थे, ब्रिगेडियर हरवीर सर, इनको मैं लगभग पिछले 30 सालों से जानता हूं। सर को मेरा सौभाग्य रहा है, इनके अंडर में बहुत सारी चीजें प्रेरित करती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जब हम छोटे थे तो जी सर बिल्कुल, तो उस समय से मैंने सर को देखा है, चाहे वो करगिल का युद्ध हो, पुलवामा का युद्ध हो, सर का न केवल बोल चेहरा, अंदर से जो मोटिवेशन होती है, आज आप इनके अनुभव सुनेंगे। दो शब्द मैं जरूर बताना चाहूंगा सर के बारे में। न केवल आपका कैरियर बहुत शानदार रहा है, आपकी एजुकेशन, आपने एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिकल स्टडीज, एमफिल इन नेशनल सिक्योरिटी एंड मेनी अदर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए हैं। सर अभी भी आफ्टर रिटायरमेंट इज अ प्रोफेसर इन रोहतक, सो ही इज स्टिल वेरी लाइक स्कॉलर एंड ऑलवेज हैव द थॉट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड सर सियाचिन ग्लेशियर में 3 बार तैनात रहे हैं, आप समझ सकते हैं, और कारगिल जो युद्ध हुआ था जिसको हम ऑपरेशन विजय कहते हैं, आप उसके हिस्से थे, और भारत ने जो उस युद्ध में विजय पाई थी, तो वो वीर हमारे सामने हैं। तो एक बार हम सबके लिए थे। और बहुत सारे अवार्ड हैं, पर एक चीज और बताऊंगा कि सर भी मेडिटेशन पिछले 30 सालों से करते हैं, तो द ब्लैंक इस ये भी हम सुनाएंगे। और हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल विकास भाई जी भी, विकास राव चौहान, आप सबने इनको देखा होगा उद्घाटन के समय, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं, स्माइली चेहरा, एवर यंग। सर को भी मैं पिछले 25-26 सालों से देख रहा हूँ, आप 25-26 सालों से राजयोग का अभ्यास करते हैं, बहुत ही सुलझे हुए। आप सबको पता है जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारी, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाते हैं हमारे कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जितना भी अकोमोडेशन होता है दिन रात लग के, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, वो भले सीनियर ऑफिसर हैं, ऑफिसर्स हैं, लेकिन सेवा में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी अपनी जो सेवाएं हैं वो सियाचिन में दी हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन हमारे डीजी सर से मैं पूछना चाहूंगा। सर ये जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, ये सच में काम करता है कि नहीं? आप ब्रह्मा कुमारी इसके कांटेक्ट में कैसे आए, और आपको कैसे निश्चय हुआ कि ये जो आत्मज्ञान है, परमात्मा से जो हम योग लगाते हैं, उसकी जो शक्तियां हैं वो कैसे मिलती हैं, और उसका हमारे कार्य क्षेत्र में कैसे प्रभाव पड़ता है? तो सर यहां से आज के हम आपकी जर्नी शुरुआत करेंगे।
ओम शांति। अभी शैलेन भाई ने पूछा कि मैं ज्ञान में कैसे आया, तो ज्ञान में मैं 2013 से आया हूं, और आप जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, मैंने इस तरह से कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी कोई। मैं टीवी देख रहा था तो उसमें पीस ऑफ माइंड चैनल चल पड़ा, चैनल चेंज करते रहते ना बैठ के खाली, तो वो चेंज किया तो वो पीस ऑफ माइंड चैनल लग गया। उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा था, शिवानी बहन को काफी देखा है, पर उससे मुझे लगता है वो शिवानी बहन का प्रोग्राम नहीं था या जो, पर मुझे वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम इतना अच्छा लगा फिर और प्रोग्राम देखता रहा। और मैंने वो टीवी देखते देखते, उसमें सिखाते हैं धीरे धीरे, तो पहले मैं नॉन वेजिटेरियन खाता था तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर उसमें 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, और मैंने 4 बजे उठ के सवेरे मेडिटेशन करना भी शुरू किया। तो किसी ने सिखाया नहीं था जब तक, टीवी से तो जो सीख सकते हैं आप, पर जैसा भी था तो आत्मा परमात्मा का भाई जी ने पूछा कितना इफेक्टिव है, मतलब इतना ही जो उसमें आजकल हमें फायदा क्या हो गया है, जो पहले पुराने भाई बहन रहे होंगे शायद उनको उस टाइम इतने विजुअल्स अवेलेबल नहीं होंगे, इतने वीडियोज अवेलेबल नहीं होंगे। आजकल जैसे टीवी वगैरह में जब मैंने देखा कि उसमें उसने दिखाया चमकती हुई आत्मा और वो ऊपर जा रही है और ऊपर जो परम धाम है तो उल्टा झाड़ है ऊपर, तो यही चीजें ज्यादा उस टाइम विजुअलाइजेशन ही ज्यादा था, पर विजुअलाइजेशन अच्छा था। तो मैंने टीवी को लगभग 1.5 साल तक फॉलो किया और उसमें मुझे फायदा होने लगा, तो मुझे गुस्सा काफी आता था और भी बातें जो हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा मुझे जो समझ में आया कि गुस्सा जो था उसमें मुझे थोड़ा फर्क महसूस होने लगा। और फर्क इस तरह से था कि जैसे अगर गुस्सा लंबे समय के लिए आता है फिर बार बार आता है ना, और उसके बाद जो है गुस्सा आने के बाद आपको बाद में पछतावा भी होता है, तो इन बातों में फर्क पड़ रहा था और अच्छा लग रहा था। एक बात और है, आप लोग देखेंगे कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये बड़ा क्लियर नहीं होता ना कि ये हम क्यों ये कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं इसे और मैं जो सवेरे 4 बजे उठने लगा, मेरा ये जो है क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन छूट गया, खाने का मैं ध्यान करने लगा, तो इसका मतलब है कुछ तो विशेष बात है इसमें, अपने आप ही चेंज हो रहे हैं ये, वरना चेंज कैसे होता। तो ये तो आने का रहा और लेकिन जब मैं पुलिस में था तो एक शक की मिजाज होता है, थोड़ा सा शक की होता है कि भाई ये संस्था कैसी है, और दूसरा ये है कि एक सीनियर पोजीशन में होने पे आप कहाँ जाएंगे कैसे काम। तो मैंने पता कराया कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में, अपने हमारे यहाँ इंटेलिजेंस होते हैं आप सब जानते होंगे, सभी के ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, संस्थाओं में इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन होती है। उन्होंने पता करके बताया, बोला नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है उनकी तरफ से जो। तो वो रहा, उसके बाद फिर मैं 1.5 साल के बाद गया मैं, और मैंने अपना जाके उनको बताया नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह ये बताया, तो बहने तो जैसे उन्होंने तो कोई ठीक है, और मैंने ये भी कहा तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट भी मान ली कि भी मैं जो है ना नॉर्मल टाइम में नहीं आ पाऊंगा, वो जो टाइमिंग है आप एक विशेष क्लास कर दीजिए, उन्होंने वो भी कर। फिर 5-6 महीने बाद धीरे धीरे जाते रहे, मुरली सुनते हैं आप, धीरे धीरे पता लगेगा आपको। यहाँ पे 2 काम मेन है, रोज मुरली सुनना, मुरली सुनने का मतलब है परमात्मा हमें 3 पेज का महावाक्य लिखते हैं और उसके बाद हम योग करते हैं, इसका नाम है राजयोग। सबसे इम्पोर्टेंट तो योग है। अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे कनेक्शन हो गया, अब हम दोनों का आपस में हमारा कनेक्शन हो गया ना, ये है योग। और ये आप जो है हमेशा योग में है, कभी अपने परिवार के, कभी अपने दोस्तों के, कभी सर्विस में, सबसे योग में है हर समय। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट योग जो है दुनिया में है आप आत्मा का, अब तो आप समझ गए होंगे कि आप आत्मा हैं, आप आत्मा का परमात्मा से सबसे इम्पोर्टेंट योग ये है। इसी एक योग में हमें सब प्राप्तियां होती हैं, बाकी योग में हमारे खर्चे हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैंने तो ये धीरे धीरे सीखा, तो मैं यही आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमारी सारी प्राप्तियां परमात्मा से हो रही हैं। आप जो चाहते हैं उन्हें बताएं, धैर्य रखें, जल्दी ना करें। जैसे बच्चे को सिखाते हैं तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार वो होता है, और हम भी जब कोई नई चीज सीखते हैं तो पहले कुछ छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हैं, अनियम हो जाता है, वो सब ठीक है, चलते रहना इसके अंदर। और बहुत ही इफेक्टिव, और मैं तो ये समझता हूं कि आप लोग यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसे हमारी गिनती होती है ना, लाख करोड़ अरब है ना, खरब वगैरह, लेकिन जब गिनतियों की जो बीच में बाद में बिंदी लगी होती है, एक के बाद 5 जीरो लगा दो तो 1 लाख, 7 जीरो लगा दो तो 1 करोड़। आप लोग सब हिंदी समझ पा रहे हैं ना, और 1 के बाद 9 जीरो लगा दो तो अरब हो गया। लेकिन जब गिनतियों की एक वो नहीं रहती, कोई गिनती नहीं रहती, गिनती भी गिनती ना रहे, मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 20, 25, 30 कितनी, तो जिसे जब इतनी कमाई करनी है आपको अगर, तो भगवान से बिजनेस करें, और भगवान से बिजनेस बस सिंपल है, उन्हें याद करना है, समझ गए ना। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि पदम जो है भगवान के पैर में फूल जो होता है, भगवान के पैर में, श्री कृष्ण के पैर में कहते हैं पदम था, फूल बना, वो कमल का फूल बना हुआ था। और आप देखते हैं कि पदम के जो जितने भी देवी देवता हैं वो कमल के फूल पे बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये नंबर संख्या भी होती है, संख्या का, जिसमें संख्या में जीरो की कोई गिनती नहीं है, अंग्रेजी में कहें तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन और जिलियन। जिलियन का मतलब ए बी सी डी ऐसा और लास्ट में जेड, ये जहां पे गिनती है। तो इतनी कमाई होगी आपको हर समय, हर तरह की प्राप्ति होगी। इसमें पैसे की तो नहीं होगी इस तरह से, जैसे होगी वो भी हो जाएगी जब होना है विश्वास, लेकिन आपके अंदर जो अंदर परिवर्तन आएंगे सब धीरे धीरे। तो मैं इस प्रकार आया इसके अंदर और तब से मैं चल रहा हूँ, और ये कोई 12-13 साल हो गए। और उसके बाद मैं समय की, कई बार कहते हैं लोग समय नहीं था, तो पहले मैं बहुत गोल्फ खेलता था, तो जब तक तो मैं, फिर मैं डीजीपी बना 2018 में, तो मुझे पहली चिंता ये हुई कि मैं शाम को जाया करता था सेंटर में, सुबह नहीं जाता था, सुबह गोल्फ खेलने जाता था। तो मुझे पहली चिंता ये हुई कि अब ये डीजीपी हो गए हैं तो काफी बिजी रहेगा, शाम को जाना मुश्किल होगा, तो सुबह कैसे मतलब सेंटर जाना बंद ना हो जाए, क्योंकि प्राप्तियां इतना था, मुझे अच्छा लगता था बहुत ज्यादा जाना। और यहाँ तो आपने देख ही लिया हुआ, जैसे आप यहाँ सेंटर में भी जाएंगे तो ऐसे ही बैठेंगे, बस सामने एक बहन बैठी होंगी या दीदी बैठी होंगी और आप सामने बैठ करके सुन रहे हैं बस, और आज जाएं सुने और मेडिटेशन करें और चले जाएं बस, वहां पर और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने समझ में आ गया हो, कोई ना तो ये दीक्षा देते हैं आपको कोई, ना आपको कोई मंत्र देते हैं, कई जगहों पर मंत्र देते हैं और मंत्र दे के बोलते हैं किसी को बताना मत, वो अलग बात है, मगर यहाँ पे कोई दीक्षा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आप लोग कलर क्लोथ में है, हम लोग व्हाइट पहने, हमने जो व्हाइट पहना है ये इच्छा से पहना है, मतलब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ, तो आप जो जैसा पहने। और यहाँ पर एक बात और है, कभी सोचना नहीं, डरने की बात नहीं, कई बार बहनें डर जाती हैं कि भाई लोग कहें ना साधु बन जाए, वो साधु वाधु नहीं बनने वाले। यहाँ पर बार बार ये सिखाते हैं कि जो आपका जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना है आपको, छोड़ना नहीं है। जो साधु वगैरह होते हैं वो लोग निवृत्ति मार्ग होता है, छोड़ के चले जाते हैं, मगर यहाँ पर आपको ये बार बार बताया जाता है कि आपको जो भी करना है परिवार में रह के ही करना है, है ना, तो परिवार में रह के करना होगा। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, बस यही जो 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 है यही, बस यही इंट्रोडक्शन हो गया। धीरे धीरे और सीखेंगे, सीखने का तो बहुत ज्यादा काफी है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं है, मतलब कुछ गहराई, मतलब ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ कुछ और है, कुछ एक्स्ट्रा है, नथिंग। और वो आपने देख ही लिया होगा ये, खैर अभी तो पता नहीं आपको, फ्री है ये, सब जगह फ्री होता है हर जगह पर। और सेंटर इतने ज्यादा हैं कि आप जब अपने यहाँ जाएंगे वापस, अपने जहाँ पे रहते हैं आप, तो आप देखेंगे कि सेंटर आपके बहुत नजदीकी होगा ज्यादातर, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या है सेंटर्स की। और सेंटर में जाके देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग नए आए हैं, एक अभी तो एक दिन डेढ़ दिन वैसे हो गया है, अभी लगभग डेढ़ दिन और बचा है, और इसको आप और इस्तेमाल करें। इसको ये ना समझें कि रूटीन में ये कोई ट्रेनिंग है आपकी, वो रूटीन ट्रेनिंग नहीं है। आप बहुत ही लक्की आदमी है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लक्की कि आपको ये एक्सपोजर मिल रहा है। परमात्मा के बारे में बहुत जगह बातें होती हैं, धर्म के बहुत हर जगह बातें होती हैं। आप लोग भी सभी लोग, हम जो भारत में विशेषकर भारत में रहते हैं, तो सभी पूजा भी करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते तो घर में होती जरूर है, कोई ना कोई चलता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपको परमात्मा का साथ महसूस होगा, और नथिंग एबनॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मुझे कुछ भूत पिशाच या कुछ ऐसा कुछ वो हो गया, सब कुछ नॉर्मल, मतलब जो जितने भी नेचर के लॉ हैं, अगर वो सेब ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर से नीचे ही गिरेगा। कभी आप मेरे ऐसे नहीं कि मैंने, जैसे अपने पिक्चर में दिखा देते हैं कि वो साधु महाराज ने देखा या किसी ने देखा और सेब नीचे से ऊपर उठ गया, एबनॉर्मल कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हर चीज नेचुरल, जो परिवर्तन आएगा वो मेरे अंदर आएगा, अंदर का मतलब मेरे विचार में, मेरे मनोबल में, और मुझे जैसे हमेशा परमात्मा का साथ महसूस होगा। और आपने सुना ही शिवानी दीदी को कि आपके विचारों में इतनी ताकत आ जाएगी, आपने जो सोचा वैसा ही होगा। आपने सोचा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो आप देखेंगे कि वो डॉक्टर बनेगा। और किसी वजह से कुछ कमी रहेगी तो कमी मेरी सोच में होगी, मेरे उसमें विश्वास में होगी, तब है ये सब बातें होंगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे और बातें, तो बाकी फिर बात करते रहेंगे अभी हम। और
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर हरवीर सर से है। सर, जब व्यक्ति बहुत ही केओस में होता है, किसी परिस्थिति में होता है, आप जैसे युद्ध क्षेत्र में होते हैं जहां पे डर घबराहट ये माहौल में होता है, क्या ऐसी परिस्थिति में भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं? सर, आपका तो कारगिल का भी रहा है, उस घटना को भी इस अनुभव से जोड़िए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, क्या उस परमात्मा की मदद को, क्या हम उस अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सुरेंद्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जय हिंद। जैसा सुरेंद्र भाई ने बताया, मैं 30 साल से बाबा की मेडिटेशन में चलने का सौभाग्य मिला, और आज जो शिवानी बहन का जो आज वाला टॉक है बहुत ही पावरफुल था। मतलब जितना भी हमने 30 साल में सीखा है, वो बहन ने 1-1.5 घंटे में पूरा आपको समरी बना के दे दिया। जो हम अंदर से कर रहे हैं वही हमको मिल रहा है। जब इसमें बहुत गहराई कीन हो जाता है तो आप क्या रिस्क है, बाहर क्या हो रहा है, उसकी तरफ विचार नहीं जाते हैं। विचार कहाँ जाते हैं, सही क्या है, मैंने कैसे करना, आप सारा फोकस वहां पर रहता है। वो करने कितना बड़ा रिस्क, आप जो जैसे सवाल पूछा सुरेंद्र भाई ने, आपके अलचल बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं इन चीजों को एक एग्जाम्पल से बताने के लिए, जो कारगिल की लड़ाई थी उसको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। काफी सारे बैटल में हमने हिस्सा लिया था, एक बैटल को मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। ये कारगिल, जैसा आप सबको पता है, कारगिल की जो लड़ाई थी वो इस धरती के ऊपर जब से धरती बनी है आज तक की सबसे डिफिकल्ट लड़ाई लड़ी गई है। इस जमीन के ऊपर कभी भी इतनी डिफिकल्ट लड़ाई लड़ी नहीं गई है जितनी कारगिल लड़ाई थी, क्योंकि पूरी लड़ाई थी 14,000 फीट से लेकर 20-21,000 फीट की पहाड़ियों, पूरा बर्फ में लड़ाई लड़ी गई थी। तो तुरतुके एक इलाका है, ले के साइड में पड़ता है, और तुरतुके इलाके में जैसे कारगिल वॉर में हुआ क्या था, जब पाकिस्तानी थे वो सर्दियों में जो पोस्ट हम खाली करते थे, हमने खाली किया और उन पे आके बैठ गए थे सर्दियों में वो। और अगली समर में जब 99 के समर में जब हम वापस यहाँ पर समर में उन पोस्ट को ऑक्यूपाई करते थे, जब जाने लगे तो वो सारी की सारी पाकिस्तानी उनके ऊपर बैठे हुए थे, और हमारी काफी कैजुअलिटीज हुई क्योंकि हमको तो अंदाजा नहीं था कि यहाँ पाकिस्तानी आके बैठे हुए। तो तुरतुके एक ऐसा सेक्टर है जिसमें तकरीबन 15-16 ऐसी पोस्ट हमारी थी जिस पर दुश्मन आके बैठ गया था, और काफी तुरतुक बटालिक जुबार ये नीचे तक काफी हमारी कैजुअलिटी हुई शुरू के एक महीने में, जून 1999 में टू बी प्रिसाइज, क्योंकि पता नहीं था दुश्मन यहाँ पर आगे बैठे हुए। तो तुरतुक में एक पहाड़ी ऐसी थी जिस पे कोई फायर नहीं आ रहा था दुश्मन का, और हमको ये अंदाजा लगा कि इस पर दुश्मन नहीं बैठा हुआ है, और वो इतनी डिफिकल्ट पोस्ट थी कि उस पर हमने भी कभी ऑक्यूपाई नहीं की हुई थी, तो बहुत उस पर पढ़ाई चढ़ाई भी डिफिकल्ट थी, बहुत ऊंची थी, तकरीबन 20,000 फीट के आसपास। तो ये निर्णय लिया गया कि तुरतुक में अगर ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है तो ये चोटी लेनी पड़ेगी, सबसे ऊंची है, यहां पर एक बार हम बैठ जाएंगे तो जो दूसरी जो चोटियां हैं जहां पाकिस्तानी फौज बैठी हुई है उनको डोमिनेट करना आसान हो जाएगा, उस पर फायरिंग डालना आसान हो जाएगा। तो इसको अंजाम देने के लिए एक इन्फेंट्री यूनिट में घातक, आपने सुना होगा घातक प्लाटून होती है, घातक प्लाटून कमांडो जो एक 900 बंदों की यूनिट होती है उसके बेस्ट 30 बंदों को घातक बोलते हैं, जो फिजिकली मेंटली टॉप 900 में से 30 सेलेक्ट बंदे। तो एक महार की यूनिट थी, उस घातक प्लाटून को टास्क मिला कि आप इस पर जाके पोस्ट बनाओ। वो उन्होंने कोशिश किया, नहीं सफल हुए, एक ऑफिसर की डेथ हुई, कुछ कैजुअल्टी हुई और ये ऑपरेशन फेल हो गया। फिर दोबारा क्योंकि तुरतुक में काफी बड़ा इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, यहाँ तो ऑपरेशन रुकी गए अभी, फिर सोच विचार वार में हेडक्वार्टर में, फिर हमारे पास एक लद्दाख स्काउट रेजिमेंट होती है, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में ये जो लद्दाखी है वही ट्रुप्स होते हैं, वो पक्का लद्दाख में रहती है वो, तो उनके क्योंकि लद्दाखी ट्रुप्स हैं वो पैदा ही 10,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, तो फिजिकली माउंटेन पर ऑपरेट करने के लिए बहुत ही फिट होते हैं वो। फिर लद्दाख स्काउट को टास्क दिया गया, चलो लद्दाख स्काउट की टीम जाएगी, सिलेक्टेड टीम, ये इस पहाड़ी पे कब्जा करेगी। लद्दाख स्काउट गई, उन्होंने कोशिश किया, थोड़ी सी कैजुअल्टी हुई, वो भी वापस आ गया कि यहाँ पर ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको फिर तकरीबन काफी टाइम बीच इनके बीच में निकला, लेकिन फिर हाईएस्ट लेवल पर सोच विचार चल रहा था, तो हाईएस्ट लेवल पर फिर एक सोच विचार ये निकला कि क्योंकि यहां पर हमको जाने के लिए बेसिकली माउंटेनियस चाहिए, सोल्जर भले ही ना हो बट माउंटेनियस, वहां तक तो हमने को फाइटिंग तो होने नहीं वाली है, इसके ऊपर चढ़ के हम बैठ जाए किसी भी तरीके से। तो फिर एक पूरी जो हमारी सेना है और कुछ एक सीक्रेट फोर्सेस भी होती हैं, उनमें ये बोला गया जो बेस्ट माउंटेनियर्स को इकट्ठा कर लो और बेस्ट माउंटेनियर्स को भेजो यहाँ पर। तो अलग अलग फोर्सेज में जो माउंटेनियर्स थे, कि कुछ स्पेशल फोर्सेज जो सीक्रेट होती वहां से माउंटेनियर्स बुलाए गए, और फिर एक 10 जो जवान और एक जेसीयू इनकी टीम तैयार की गई। उसी टाइम पर मेरी लेह में पोस्टिंग हुई थी, तो वो ढूंढ रहे थे ऑफिसर किसको लगाया, ऑफिसर माउंटेनियर बहुत कम मिलते हैं, तो ऑफिसर में सोचा कि इन्फेंट्री का है, फिजिकली फिट देखता है, इसको साथ में लगा दो। तो इस टीम का मैं टीम लीडर बन गया और ये हमको टास्क मिला कि ये ऑपरेशन करना है और ये इसकी बैकग्राउंड है। तो जैसे बैकग्राउंड सुनते हो आता तो ऐसे हलचल हो जाती है, क्या लद्दाख स्काउट भी जा चुके हैं। अच्छा, फिर उस टाइम के तो सारी न्यूज टीवी में आ रही होती है उसके सेक्टर में इसकी डेथ होगी, वो शहीद हो गया, तो ये सभी हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन थी। ये लड़के सारे टफ थे फिजिकली, तो हम तुर्तुक बेस से हम चले और यहां तक जाने के लिए हमारे तीन स्टेजिंग कैंप थे। स्टेज तुर्तुक है तरफ 10,000 की फिट पे रोड हेड जहां तक गाड़ी जाती है, फिर 13,500 की फिट पर कैंप वन, 15,500-16,000 की ऊंचाई पर कैंप टू, और फिर तकरीबन 18,500-18,500 की कैंप थ्री, इसका बेस में जो जहां पर कब्जा करना था। और ये फर्स्ट कैंप के बाद पूरी बर्फ थी, कोई ऐसे रास्ता भी डिमार्केटेड नहीं है, जो जो रिज लाइन थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हमने तकरीबन 8 पोस्ट क्रॉस करनी थी, ऊपर पाकिस्तानी बैठे पहाड़ी के ऊपर, उसकी बेस में वैली के साथ साथ हमको आगे जाना था। तो हम रात को चलते दिन में रुकते और ऐसे कर करके हम बेस पर पहुंच जाते हैं 6 जून को। और बेस में हमारे ऊपर हर एक बंदे के ऊपर, मेरे ऊपर कम था बट बाकियों के ऊपर 38 से 40 kg वेट था। उसमें क्योंकि आप वहां पर जा रहे हो तो आपको पानी भी पीना है, तो आपको केरोसिन चाहिएगा बर्फ पिघलने के लिए, फिर आपको ये स्नो इक्विपमेंट भी चाहिए, टेंटेज भी चाहिए, माउंटेनिंग इक्विपमेंट भी चाहिए, वेपन भी चाहिए। तो हमने राशन बहुत ही कम रखा था और प्लान ये थी कि वहां जाने के बाद सारा सामान रख के एक बार सेट हो जाएंगे, फिर बिल्कुल खाली आएंगे जवान, फिर वो राशन को लेके जाएंगे। तो जैसे हम पहुंचे वहां पर हमने टेंट वेंट लगा लिया, तो हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के आसपास की पोस्ट थी उनको भी अंदाजा था कि 2 बार इंडियन आर्मी यहां पर आ चुकी है तो फिर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उनको पता था कि इस सेक्टर में अगर ऑपरेशन अगर बदलना है ऑपरेशन का माहौल तो ये पोस्ट कैप्चर कर ही बदल सकते हैं। तो हमारे ऊपर काफी फायरिंग आई, LMG HMG जो फ्लैट ट्रजेक्टरी वेपन्स होते हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस 2 किलोमीटर के आसपास था, 2-3 किलोमीटर, तो वो फायर इफेक्टिव नहीं होता है। हम टेंट में सेटअप करके हम प्लान कर रहे थे कि रात को अपना ऑपरेशन तैयार करेंगे, रात को राशन की पार्टी जाएगी और फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो तकरीबन 4 बजे के आसपास जब हम सेट होकर प्लानिंग कर रहे थे, आर्टिलरी की फायरिंग शुरू हो जाती है। आर्टिलरी की फायरिंग तोप का गोला होता है, जो तोप है तकरीबन मान लो 30-35 किलोमीटर पीछे और वो आगे गोला उसका गिरता है। एक गोले का तकरीबन मान लो उसका किल जहां गिरता है उसका किलिंग एरिया उसको बोलते हैं, किलिंग एरिया तकरीबन 150 से 200 मीटर के आसपास है, कि जहां गिरेगा उस सर्किल में 150 मीटर आसपास जो भी होगा तो उसको वो छरा उसको बुलेट से भी खतरनाक होता है प्रकार से। बुलेट तो बड़ी एक ही वो नुकसान करेगी, छरा तो पूरा बॉडी को काट सकता है। तो जो गोले गिरने स्टार्ट हुए तो एक गोला गिरा 800 मीटर दूर, तो चलो हम सोचा दूर ऐसे ही कोई फायरिंग हो रही है। फिर दूसरा गिरा 600 मीटर, 400, और हर 10 मिनट के बाद एक गोला आया जो हमारा लोकेशन था उसके नजदीक आने स्टार्ट हो गए उधर से। तो हमको बड़ा क्लियर होगा 3-4 गोले के बाद कि हम टारगेट हैं, कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता गोलों को हमारी लोकेशन पर लाने की पूरी प्लानिंग है। और अगेन ये भगवान का एक कॉन्फिडेंस था कि भगवान की ब्लेसिंग थी कि जैसे ही वो गोला बहुत नजदीक, ये लगा कि नेक्स्ट 1 या 2 गोला हमको उड़ा देगा भी। तो पूरी टीम के चेहरे पर मैं देख रहा हूँ उनके फेसेस को ऐसे ऐसे सफेद हो गए थे, तकरीबन बिल्कुल सफेद, ना आप कहीं भाग सकते हैं ना कि आप छुप सकते हैं, मौत एक एक इंच आपकी तरफ बढ़ रही है और कोई भी नेक्स्ट गोला आपको सबको खत्म कर सकता है। तो ये सब चल रहा था तो मेरे को ये 96 में ज्ञान में आया था, मैं ये 99 है, 3 साल हो गए थे। तो मैं नीचे चला था, उसी टाइम से लगातार एक योग की स्थिति थी क्योंकि बहुत तगड़ा चैलेंज था। तो ऐसे में योग बड़ा अच्छा लगता है जब आपका ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी के कोई ऐसी चीज करने जा रहे हो जो आपके काबू से बहुत बार ऑटोमेटिक आपको पूरा मन लग जाएगा।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, जब आप योग की बात करते हैं तो वो मनोदशा कैसी होती है, लाइक यू कनेक्टेड टू गॉड, उसको थोड़ा सा सर
अगर ये सेल अंदर समझ पाएगा, आप में से पता है कितने समझ पाएंगे, आपको साफ दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, साफ दिखता है, आसपास भी आत्मा है, ऐसे डॉट दिखता है कोई आत्मा है, ये लाइव आत्मा है, सुप्रीम सोल है, वो एक लाइट है। जैसे यू मेडिटेशन में बैठते हो आपको जो अमृत वेला में जो अनुभव होता है वो मेरे को सनंद भाई लगातार अनुभव था वो कंटिन्यूस कि वो आत्मा है, लाइट है, सुप्रीम सोल है, परम धाम में हमें और एक रोल पैदा कर रहे हैं। और जैसे शिवानी जिष्टनाथ बोला ये एक कपड़ा है, ये साफ दिखता कि बॉडी नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगी, इट इज दैट क्लियर। तो वो क्लियर होता था फिर आपको हलचल में आप नहीं आएंगे। तो जैसे वो लास्ट ये था कि किसी कोई भी गोला हमारे ऊपर आ सकता है, अभी अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद क्योंकि जो भी दूसरों का देखा अनुबंधा हम हरकत नहीं कर रहे हैं, तो उसको एनवीटी से हमको वो देख नहीं सकता, वो एनवीटी से तभी देख पाएगा वो जब कोई हरकत होती है, तो फायरिंग रुक जाती है। तो फिर काफी सब एकदम दहशत में आ गए थे, जो मेरे को दिख रहा चेहरे से, पर दिखा कोई नहीं रहा था, सब अपने अपने भगवानों को समय से जोर से पकड़ लिया, मैंने शिवाबा को पकड़ लिया। और फिर 7-8 बजे सेट होके बोला कि चलो सर अभी नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं, जो राशन कर लेंगे, हमने अच्छे से खाया नहीं था 3 दिन से, तो राशन कुछ लेके आते हैं और फिर कल ऑपरेशन प्लान करेंगे। जब ये राशन वाली पार्टी लिंक आता है नीचे, तो ये 5-6 पोस्ट जो थी जिसके आगे से हम गुजरे थे, ये सारे अलर्ट हो चुके हैं अभी कि यहां अगर इंडियन आर्मी की कोई टुकड़ी है तो उसकी मेंटेनेंस तो तुरंत से ही होनी है। पहाड़ में एक ही रास्ता होता है, दूसरा रास्ता है नहीं, तो तुरंत से मेंटेनेंस होनी है, तो यहीं से गुजरेंगे। तो वो सारे एनिमिटी के साथ वो पोस्ट अलर्ट थी। तो जैसे ही हमारी पार्टी नीचे जाने लगी, जैसे फर्स्ट पोस्ट के नीचे पहुंचे, फायरिंग, ये क्रॉल करके डक करके भागे, क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट के आगे आगे फायरिंग। तो ये ऐसे करते तीन चार पोस्ट तक इन्होंने जाने की कोशिश की, देन दे रियलाइज कि ये मुश्किल अभी बचना। अरे ये मालिक की मेहर थी कि हर रोज डेथ हो रही थी, बट इनको कोई गोली अभी तक लगी नहीं है। तो चौथी पोस्ट के बाद तो ये सारे जो 7 के आसपास थे ये कमांड, ये माउंटेनियर, ये वापस बोले यार अभी रिस्क नहीं लेना है, नीचे जाने में पता नहीं हम कितने पहुंच पाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर पता नहीं कितने पहुंच पाएंगे, ये तो मौत ही बिल्कुल क्लियर कट, ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। ये वापस आ जाते हैं, तो वापस ये आए तब टाइम है तकरीबन रात के 9-9:30 बजे का, और मैं अपने टेंट में हूँ। ये वापस आ जाते हैं, इनके आपस में बातचीत होती है, और मेरे पास ये सारे आ जाते हैं तकरीबन। और JCO है वो बोलता है कि सर ये गए थे राशन, ये पोजिशन है कि हर एक पोस्ट से फायरिंग आ रही है और नीचे जाना नहीं पॉसिबल है, और पता नहीं कितने नीचे पहुंचेंगे, वापस तो कितने मरेंगे। एक ही कल अगर यहां पर रुक गए, जो आज आरटी की फायरिंग रुक गई है, कल सुबह फर्स्ट लाइट होते ही फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तो पहले दिन वो आरटी फायरिंग स्टार्ट होती है 4 बजे, तो उनके पास 2 ही घंटे थे, 2 घंटे में नहीं रेंजिंग कर पाए अपनी, लेकिन कल तो उनके पास पूरा दिन रेंजिंग करने के लिए, तो आज जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां एक पल भी रहना प्योर सुसाइडल है। तो जब ये मैंने सुना तो मैं तो योग में भी था लगातार, फिर जैसे शिवानी बहन ने बोला मेरे को यही पता था कि आत्मा का जो काम हो अपना फर्ज पूरा करना, और मेरी आत्मा में क्लियर आवाज है कि मैंने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया, फर्ज है उसको अटेम्प्ट करना कम से कम, वो सक्सेस ना होगा अलग चीज है, बट कम से कम एक बार अटेम्प्ट तो हम करें। हम तो बेस में आकर उस पहाड़ी को देख के ऐसे वापस जा रहे हैं। तो उसी पल में मैंने डिसीजन लिया कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, और क्योंकि हम लास्ट मिनट में कोई इकट्ठा किया गया था, तो ये इनके साथ मेरा वो 4 दिन का एफिलिएशन था, 4 दिन के से पहले का इनके साथ एफिलिएशन था ही नहीं, तो इनको मैं ऑफिशियल फौजी हुक्म भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं जाएगा। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, आप जो उचित समझते हो आप करिए, ये कह के मैं अपने टेंट में चला जाता हूं। तो ये जब डिसीजन लिया उसके बाद इसकी रियलिटी सिंक हुई मेरे को टेंट में जाने के बाद। उस टाइम तो बोल दिया आत्मा ने कि भाई नहीं किया, बट वंस आई वेंट टू माई टेंट, वो आधे घंटे मेरे को इसकी रियलिटी सिंक होगी अच्छे से कि भैया आपने मौत को चुन लिया है और दूसरा कोई चारा भी है नहीं। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि ठीक है अगर ऐसे ही आनी है तो ऐसे ही सही, मतलब ऊपर से योग था तो उसमें आप लाइट भी रहते हो और वहां का जो आनंद है योग का, देन यू फील क्या उसी में तो जाना है, मतलब वही तो जाना है, तो घर भी आपको पता है कहां जाना है। तो मैंने ठंडे दिमाग से आई वॉज वेरी क्लियर नाउ अनदर 8-5-6 hours दिस ह्यूमन लाइफ इज कमिंग टू अ क्लोज। तो परिवार के लिए चिट्ठियां, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए जो भी मैसेज मैंने लिख दिया और लेटर को पॉकेट में डाल लिया, और ये था कि फैमिली को क्लोजर मिल जाए कि ना लास्ट मेरे थॉट्स क्या थे, कैसे हुआ ये, नहीं तो ऐसे आप मर रहे हो अनजान जगह पर, किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। एटलीस्ट थ्रू दिस लेटर दिल बी वेरी रेस्पेक्टेबल क्लोजर ऑफ माई ह्यूमन जर्नी। तो सुबह के टाइम पे भरपूरी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मोमेंट व्हेन द डेथ इज जस्ट फ्यू आवर्स अवे। तो सुबह अराउंड 6:30 again here Ram Ram Sahib. So I was not aware whether this party is gone, what they are doing. My thoughts to my journey ki taraf the pura ek bhi, us time ye thoughts nahi chal rahe, dusre kya kar rahe hain ye. To ye mere paas aaye aur jaise bilkul tired, uske sath char aur jawan, to aise victory sign kiya. I was surprised to see them here. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो चले गए होते मेरे ख्याल से. He says कि सर हम रात को बेस्ट जो हमारे चार माउंटेनियर्स थे उसको भेजे थे रात को और वो फिक्सिंग करके आ गए टॉप तक. Then instantly I realized कि ओह ये तो जा नहीं सकते थे आप. मतलब जो एक नॉर्म होता है ऑफ आर्मी आई थिंक ऑल दी फोर्सेस, आप किसी को अपनी बॉडी को भी पीछे नहीं छोड़ते. मतलब somebody become martyr तो उसकी बॉडी को भी साथ लेके आते हो. यहाँ अलाइव सोल्जर वो आपका टीम लीडर भी है तो देयर इज नो क्वेश्चन, दे कुड लेट मी देयर. तो उनके पास चॉइस बची नहीं. देवर बिटवीन डीप सी एंड डेविल, जा नहीं सकते. यहां रुक गए तो उनको लगा एक ही रास्ता अभी करके देख लो. वहां ऊपर जाके बैठ गए तो शायद आप बच जाओगे क्योंकि वहां ऊपर आर्टी फायरिंग नहीं आ सकती. तो ये रो फिक्सिंग ऊपर तक करके आ गए थे. रो फिक्सिंग होने के बाद फिर तो ये जो पूरा ऑपरेशन बाया था खेलता फिर एक बार बस रोप इज फिक्स. तो ये अराउंड 70 डिग्री 75 डिग्री ऐसे ग्रेडियंट था ये पूरा ग्लेशियर. तो हम चले, हम पहुंच गए तकरीबन 11-12 बजे तक. ऊपर पहुंचने के बाद जो नेबरिंग थी पाकिस्तान के पास पोस्ट, वहां से फायरिंग आई काफी, बट वो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन था, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं इफेक्ट आया. आरटी यहां पर आ नहीं सकती. वो 1 लाख गोले गिराएंगे तब भी एक गोला भी लैंड कर जाए उसकी पॉसिबिलिटी 3 मीटर वाइज 4 मीटर का उससे भी कम वो इलाका था. तो ऐसी ये फर्स्ट सक्सेस हमारी उस ऑपरेशन में हुई. फिर जैसे ही ये नीचे तक खबर गई तो काफी खुशी भी हुई आर्मी हेडक्वार्टर में भी, नेशनल लेवल पे भी जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे. फिर एक और चीज निकल गया, इसमें कुछ एक ऐसी फोर्सेस के जवान थे जो सीक्रेट हैं और जिनको जो LC और IB के 8 किलोमीटर तक ऑपरेट करने का हुक्म नहीं है. बहुत टॉप सीक्रेट है वो. अगर आप LC पे ऑपरेट कर रहे हो, IB पे ऑपरेट कर रहे हो, बाई चांस दुश्मन ने पकड़ लिया तो वो ऐसी फोर्सेज हैं कि पूरा नेशनल इमेज, पूरा नेशनल सीक्रेसी सब कुछ धराशायी हो जाएगी. तो वो जोश में किसी ने भेज दिया तब तो माउंटेनियर्स के पास. जैसे लगी सक्सेस होगी तो सब फर्स्ट क्वेश्चन था किसने की, तो टीम का डिटेल्स गई. जैसे पता ये भी इसमें है, तुरंत फायर फाइटिंग, किसने क्लियर किया, कैसे चले गए, गोल्डन बैक इमीडिएटली. तो हमको 2 घंटे में हुक्म आए नीचे 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 जल्दी आ जाओ. और एक और यूनिट थी 9 महार, उसको बताया कि भाई रो फिक्सिंग हुई अभी तो रास्ता बन गया सारा, आप अपनी घातक प्लाटून को भेजिए. तो 9 महार की घातक प्लाटून आती है, मेजर मनोज तलवार इनके वेरी फिट ऑफिसर और कमांडो टाइप ऑफिसर था. तो वो अपनी घातक प्लाटून के साथ आया, हम नीचे आ जाते हैं, 2 जवान ऊपर भेज दिए, 3 जवानों के साथ वहां तक लगाने के लिए, बाकी हमने वापस आने की तैयारी कर ली. ये मेजर मनोज तलवार जब ये देवर क्लाइंबिंग दी फीचर रो फिक्सिंग हो रखी है, फिर भी मेजर मनोज तलवार का बड़ी स्लिप उसके आगे चल रहा था. वो स्लिप कहता मेजर मनोज तलवार सोचा इसको मैं सपोर्ट देता हूं, ही ऑल्सो स्लिप, दे बोथ डाइड द सेम डे. दैट वॉज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस फीचर. और उसके बाद आर एंटायर टीम वॉज अवार्डेड, मतलब 2-3 सेरेमेंट मिले गैलेंट्री, बाकी टीम को अवार्ड मिला. अब ये देखिए जब परमात्मा शक्ति होती है तो कैसे, मतलब एक इम्पॉसिबल मिशन था जिसको 0% भी अगर देखे मिनिमाइंड से सक्सेस को चांस नहीं है. ना सिर्फ आपको सक्सेस मिलती है, आपकी पूरी टीम इंटैक्ट है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई. उसके बाद काफी और हमको टास्किंग मिले इसी प्रकार के बटालिक मजबार में, हर जगह सफलता मिलती जाएगी. तो जब भगवान का साथ होता है, ये थ्योरेटिकल नहीं है जैसे सर ने बताया, ये रियल है. ये मतलब आप ये मान लीजिए अगर हम यहां बैठ के बता रहे हैं और इतने साल तक उसको अनुभव किया है तो हम सब उस भगवान को अपने साथ ले सकते हैं डेली मेडिटेशन के द्वारा. और वो साथ जब आ जाता है ये दुनिया फिर एक बड़ा एक पिकनिक बन जाती है, फिर आप सफलता ही सफलता आपको मिलती है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
मैं आपको बताऊं, जब सर करगिल युद्ध ओवर हुआ था तो सर माउंट आबू आए थे हमारा, आप लोग पांडवन जाएंगे तो उस समय पे पांडवन मुख्यालय था और जो संस्था के चीफ थे दादी प्रकाश मणि. तो सर का खास वो एक्सपीरियंस सारे सरेंडर जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए रखा गया. और मेरे को याद है सर के बच्चे भारती और दे वॉज जस्ट लाइक भारती 1-1.5 साल सर, और अरुण ही वॉज जस्ट, तो दादी ने भी
He
is now major, he is also in Indian Army. तो एक बार हम अरुण के लिए भी मतलब सच में ऐसा, तो उस समय पे जो बहादुरी होती है, आप लोग सेना के यू नो सुरक्षा कर्मी है, आप इन चीजों को समझ पाते हैं, या जो लोग आपके करीब होते हैं उन परिस्थितियों को समझ पाते हैं। लेकिन उस समय जब सर ने ये सारा अनुभव सुनाया तो हमारे मधुवन में भी बहुत बहुत सर को भी प्यार और जो ब्लेसिंग वो थी, और मैं समझता हूँ सर उसके बाद आप जैसे अरुणाचल गए वो बहुत सारे ऐसे काम थे, तो परमात्मा की मदद आपको न केवल यू नो अंदर से स्ट्रांग करती है बल्कि आपको मोटिवेट भी करती है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर से है। सर आप भी बाबा के बहुत पुराने योगी बच्चे हैं, पिछले 26 सालों से राजयोग का अभ्यास करते हैं, आपके जीवन में भी बहुत चमत्कार हैं हमने देखा है, तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी जो पहले पर्सनल लाइफ थी वो कैसे क्या क्या चमत्कार घटित हुए, आप वो अनुभव परमात्मा की मदद के अनुभव आप हमें सुनाएं।
ओम शांति। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार होता है, भगवान चमत्कार नहीं करता, भगवान वो करता है जो आप नहीं कर सकते, मतलब जो हमारी क्षमता से परे है। तो एक मैं जस्ट एक छोटा सा आपको बताऊंगा, वैसे तो इस 26-27 सालों में बहुत कुछ भगवान ने मदद की और तभी मैं आज आपके सामने यहां बैठा हुआ हूं। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि कोरोना जब हुआ था तो कोरोना में सारी दुनिया में डर फैला हुआ था, कल दीदी ने भी बताया समझाया कि कैसी उस समय वाइब्रेशंस थी दुनिया में, और उस समय मैं अपनी लास्ट यूनिट में था। तो कोरोना में दुनिया में तो बहुत कुछ नुकसान हुआ, मुझे दो बड़े फायदे हुए। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब रिटायरमेंट वॉलेंट्री रिटायरमेंट लूंगा और मैं सेवा करूंगा बाबा की, ठीक है। तो पहला मेरे को ये फायदा हुआ, और उस समय मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा फायदा क्या होगा, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं अंदाजा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और सचमुच वो समय मैं मतलब इतना आनंद वाला समय चल रहा है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पे मैं एनसीसी बटालियन में था, मैं मेरे सीओ पोस्टिंग जा चुके थे, मैं ऑफिशिएटिंग मतलब कमांडिंग ऑफिसर का ही रोल कर रहा था, और उस समय हमको बताया था कि क्योंकि कोरोना है तो एनसीसी के बच्चों को सर्टिफिकेट देना है, सी सर्टिफिकेट एग्जाम लेना है, बी सर्टिफिकेट एग्जाम लेना है, देना ही है उनको, और उसके लिए कैंप करना ही करना है, कैंप करना है, और बच्चे आएंगे 350-400 बच्चे आएंगे, उनको कैंप में सारी एक्टिविटीज करानी है, उनको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि 10 दिन का कैंप 5 दिन में किया जाएगा, आधा ड्यूरेशन में, और पूरे समय साथ में रहते हैं उसकी जगह उनको सिर्फ दिन में बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग कराई जाएगी, शाम को घर भेज दिया जाएगा, और पूरे पूरे आपको सुरक्षा जो नियम है उस समय के कोरोना के वो फॉलो करने हैं। और मैं थोड़ा सा शुरू से ही हेड स्ट्रांग था, मतलब आदेश पास हो कुछ लेकिन मैं वो करता था जो मुझे ठीक लगता था। तो मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे मालूम था कि जुकाम से कोई मरता नहीं है, तो मेरे को कोरोना पे पहले विश्वास नहीं था कि जुकाम से कोई मर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब कोरोना का हमने बुलाया, पहले दिन 350-400 बच्चे खड़े थे, और मैंने बोला आपका मास्क कहाँ है बच्चों, सबने जेब में से मास्क निकाला, मैंने पहन लो, एसएम साहब को मैंने इशारा किया साहब फोटो खींचो, हाँ खींच लिया फोटो, हाँ जेब में निकाल के वापस डाल लो। अब 5 दिन आपने कोई ये कैंप नहीं, ये ना मास्क लगाना नहीं है, हाँ कोई मेरा बड़ा अधिकारी आता है कमांडर साहब आते सब उठा के पहन लेना, अभी किसी ने पहनना नहीं है क्योंकि जुकाम से कोई मरता नहीं है, ठीक है ना, हाँ जो डर गया ठीक है, ठीक है ना। मैंने सिंपल आदेश दिया, मैंने बोला अब हम करेंगे, और मैं बता रहा हूं उस समय वो जो 5 दिन थे इतने शक्तिशाली दिन थे, वो बच्चों के लिए खासतौर, मेरे लिए तो थे ही, क्योंकि उन 5 दिनों मैंने वो किया जो मैं आज तक सोचता था, क्योंकि सीओ जा चुका था, मैं सीओ बन चुका था, ठीक है ना, अब मैं जैसे चलाना चाहता था वैसे चला कैंप। और उन 5 दिनों में वैसे हमें उन्हें बहुत कुछ खिलाना था बच्चों को, आपको मालूम है दुनिया में सब कुछ खिलाते हैं कैंप्स में, लेकिन मैंने बाकायदा प्योर वेजिटेरियन फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक वहां उनके लिए बनवाया। हमारे सेंटर की दीदी आती थी और हमारी बहनें आके दृष्टि देती थी उस फूड को, और उसको दृष्टि देके फिर हमारे कैडेट्स उसको भोजन को ग्रहण करते थे। और आगे बहुत कुछ हुआ वो तो हरवी सर जानते ठीक है ना, मेरे पर बहुत आरोप लगे, लेकिन देखो जिसका साथी है भगवान फिर क्या करेगा, आंधी तूफान। ठीक है, वो तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, दोनों कैंप बहुत अच्छे हुए। मेरे बटालियन की जो गर्ल्स थी, कन्याएं थी, उन्होंने टॉप किया। हमारे पूरे जो एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में उन्होंने बेस्ट रिजल्ट्स दिए और आज बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बहुत दुआएं भी मिलती है उनकी। तो कहने का भाव ये, हम जो सोचते हैं हमें वो, मतलब जो हम चाहते हैं हमें वो सोचना है। दीदी ने बताया कल भी आज भी, तो आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं आप सबको यही कहूंगा कि यहां पे आप किसके घर में आए हैं, भगवान के घर में। और भगवान कोई ऐसे ना, बाबा बोलने से आपको भी लगे पता नहीं किस बाबा की बात कर रहे हैं। भगवान हमारा पिता है और पिता को सब पता है, आपके आदि मध्य और अंत का। तो आपने सिर्फ ये करना है, यहाँ पे एक कमरा है, गोल सा कमरा, उसे हम बोलते हैं बाबा का कमरा, ठीक है ना। वहां पे जरूर जाना सुबह और रात को, रात को गुड नाइट करके सोना और सुबह उठते ही सबसे पहले वहां जाना, फिर अपने मेडिटेशन क्लास में जाना, ठीक है। अभी दो दिन निकल चुके, दो दिन बचे हैं। इन दो दिनों में आप, मैं बता रहा हूं, अपने पूरे जिंदगी का फायदा उठा सकते हैं। जो हरबीर सर ने कहा कि अभी इस समय हर चीज अवेलेबल है, आपको बहुत तैयार माल मिल रहा है, मतलब हलवा गरम गरम खा रहे हैं और उसे पचाना बहुत आसान है। तो भगवान पूरी मदद कर रहा है, वरदानी समय चल रहा है ये। और सुबह हमें शिवानी दीदी भी जब बैठी थी, उन्होंने क्लियर बताया कि अभी जो है भगवान का वरदान वाला रूप चल रहा है, आप सोचोगे और वो आपको तथास्तु, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छा से अच्छा सोचो और बहुत अच्छा सोचो। नहीं सोच पा रहे तो भगवान के, बाबा के कमरे में जाके उन्हें कहो बाबा मेरे ये कष्ट है, और लिख के, पर्सनल कष्ट है तो लिख के उसके वहां एक बॉक्स है उसमें डाल दीजिए। और अगर कोई पर्सनल कष्ट नहीं है, किसी के लिए है, उनके लिए भी आप यहीं से संकल्प कर सकते हैं। मैंने ये अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है, हमारे यहाँ एक कर्नल साहब हैं जहां मैं रहता हूं, उनकी डॉटर बहुत डिस्टर्ब हालत में थी और मुझसे लगातार, मतलब 3-4 दिन से कॉन्टैक्ट में थी फोन पे, मतलब बहुत बुरी हालत थी। और मुझे ऐसा संकल्प आया कि भाई मैं जाके उनसे मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक प्लान वैसा बन गया। हमें संकल्प हमारे काम करते हैं। मुझे अपने इन लॉज को जाके लेके आना था उनको जबलपुर में, तो मैं ऑटोमेटिक प्लान बना कि भाई मेरे को जाना है और उस कन्या से भी, मतलब उस कर्नल साहब की बेटी से मिलना है, और मैं उससे मिला। और अभी आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो रेगुलर मेरे को फोन करे, मैं फोन उठा भी नहीं पा रहा हूं उसका क्योंकि मैं बहुत बिजी था यहाँ पे अपने अकोमोडेशन में। बट उसके मैसेजेस से, रिटर्न मैसेजेस और रिकॉर्डेड मैसेज से मैं अब समझ गया हूं कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो आपको कहना चाहूंगा प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस यहीं से करके जाना, क्योंकि यहां से गाड़ी नीचे उतरेगी फिर हम नहीं कर पाएंगे। अब भी करिए, ठीक है ना। ओम शांति। थैंक यू।
मैं डीजी सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर, हम सब अनुभव की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की मदद के अनुभव, उनसे जब हम योग लगाते हैं हमारी मनोस्थिति कैसी पॉजिटिव हो जाती है। सर, तो ये जो पॉजिटिव ऑरा होता है वो हमारे संकल्पों को प्रभावित करता है, हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। सर, आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाई हमारे बंगाल प्रदेश की, तो सर मैं आपके भी ऐसे अनुभव सुनना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे प्रोफेशनल कार्य में भी मदद करता है। जी सर।
देखिए, एक तो ये शैलेन भाई कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में वर्ड आता है स्पिरिट। तो जब अगर मैं स्पिरिट का ध्यान नहीं कर रहा, स्पिरिट का मतलब आत्मा, स्पिरिट का मतलब भूत नहीं, स्पिरिट का मतलब आत्मा। अगर मैं आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और हिंदी में भी इसे कहते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म के अंदर भी मतलब है, हो सकता है बहुत गहरे मतलब भी हो, पर सिंपल जो समझ में आएगा, जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा का अध्ययन। तो अध्यात्म के अंदर भी वर्ड है आत्मा। अगर हमने आत्मा या स्पिरिट का ध्यान ही नहीं किया तो हम स्पिरिचुअल कैसे बने? दुनिया में, समाज में हम लोग उसको स्पिरिचुअल कह देते हैं, अच्छे वैल्यूज को फॉलो करने को स्पिरिचुअल कहते हैं। वो तो ठीक है, ये स्पिरिचुअल जो अच्छी वैल्यूज हैं, जो अच्छे गुण हैं, जो हमें शक्तियां आती हैं, जो हम गुणों की बात करते हैं अच्छे अच्छे, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जब ये बताया ना, योग का मतलब जुड़ना, सिंपल। और यहाँ योग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आलती पालती मार के बैठना है, अगर नहीं बैठ सकते, या लोटस पोजिशन में बैठना है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं। सिंपल याद, और आपको अभी धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, याद करना है। अब जैसे मेरे पिताजी को गए 20 साल, लगभग 2000 में गए तो 25 साल हो गए। अगर मुझे उन्हें याद करना है तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बस सिंपल याद करना है, पिताजी कैसे प्यार करते थे, इस समय में क्या कहते, उस समय क्या कहते थे, ये तो इतना सा आसान काम है और आप कोई भी कर सकता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो फैमिली आपके घर पर है, आप चाहें तो फैमिली को विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करवाया गया है विजुलाइजेशन। तो दिस इज ऑल, इतना सिंपल है भगवान से जुड़ना। और ये हम समझ लें कि जो हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस आप फॉलो करते रहें, उसमें कोई ऐसा यहाँ पर कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कि हम यहाँ का योग भी करें तो हम अपना करें ना करें, हम तो जो पूजा करते हैं वो सब करते रहें, यहाँ पे किसी बात में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। और लेकिन बस याद में जरूर बैठें, आप जब सवेरे उठते हैं तो 15-20 मिनट बैठें याद में, सोने से पहले बैठें, ठीक है, और बातें करनी है बस, वो देखना है चमकता हुआ तारा अपने को, सामने चमकता हुआ तारा भगवान भी है, मेरे पिता है, मैंने यहीं बुला लिया, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो भाई इसी रूम में आओ, अब मैं यहाँ सब भाई बहनों से बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताओ मैं क्या बताऊँ इन्हें, है कि नहीं, चिंता होगी ना, मैं तो आप लोगों को थोड़ा इम्प्रेस कर सकूँ, तो वो भी मैंने परमात्मा को कहा तो परमात्मा ही, या मेरे पिता हैं तो मैं उनके घर चला गया, आपने देखा होगा है ना, कुछ लोग देखा होगा, इतना सिंपल याद है बस। अब ये क्या करते हैं इसको प्रैक्टिकल यूज में, जैसे अब जब मैं डीजी था या जब से मैंने शुरू किया तो सवेरे उठते ही पहले हम जो है अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, है ना, और यदि मेरी कोई और एक शक्तिशाली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली जो है छोटा सा फर्क है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज में जो कहते हैं बाहर और यहाँ, बाहर का मतलब है अगर मैंने कुछ किसी को कहा तो वो मेरी बात मान जाए या मुझे फिजिकली पकड़ ले तो छोड़ना, उसे शक्तिशाली कहते हैं, ये समाज में है, दुनिया में मानते हैं, पर यहाँ समाज, यहाँ का मतलब है शक्तिशाली वो होता है अगर मेरे साथ कोई सामने वाला मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तब भी मैं शांत हूं, तब भी मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, समझ रहे हैं, ये शक्ति है। कोरोना आ गया, सबको लग रहा है कि भैया पता नहीं लगता मृत्यु हो जाए क्या होगा, लेकिन चलो मैं बच गया तो घर वालों का क्या होगा, घर वाले भी ठीक रहे तो माँ बाप तो बूढ़े हैं उनका क्या होगा, मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाएंगे तो रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब बहुत सारी बातें, तो ये सब जो चीजें हैं इनके होने के बावजूद भी हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, एक थॉट करते हैं कि मेरे चारों तरफ, मेरे परिवार के चारों तरफ भगवान के आभा मंडल का ऐसा घेरा है जिसमें मेरा परिवार और मैं बिल्कुल सुरक्षित है, बस एक थॉट, वन थॉट एंड गुड एनफ। दिन में दो बार रिपीट कर ले, चार बार कर ले, जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर ले, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि किसी को कुछ हो जाएगा, मैं ये सोचता हूं। तो जब मैं डीजी था तो मेरा काम ये था कि सवेरे उठते ही मुझे सोचना कि मेरे स्टेट में जहां पर मैं डीजी हूं सब कुछ व्यवस्था में है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है यहाँ पर, और सब लोग जो स्टेट के लोग हैं बहुत खुश हैं। फिर आप ये भी सोचते हैं कि जो आपके जो साथ में हैं, आपके सीनियर्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सीनियर्स भी खुश हैं, जो भी आप पॉलिटिकल सीनियर हैं, जो भी, सभी लोग खुश हैं। दूसरा थॉट ये था इसमें, तो ये सब बातें सोचने से क्या है कि ऐसा नहीं है कि 10.5 करोड़ की पॉपुलेशन है तो कुछ घटना ही नहीं होगी, सभी तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आपको बड़ा विश्वास रहता है, आपका जब मन में जो है हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि वहां जब मौत उन्होंने चुन लिया तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे ही होगा, और सवेरे 6 घंटे के बाद सोचना, सब बातें लिखना, लास्ट में अपने परिवार को चिट्ठी लिखना, यानी कि यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या होगा, लेकिन क्या था, मन में डर नहीं था, परमात्मा का साथ था, ये आप में चेंज ये आएगा, वो डिसीजन ले पाए इसलिए कि बाकी तो इसको लोग कुछ और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जो ना समझे, लेकिन जो मन में डर ना आना, परमात्मा का साथ, ये परमात्मा का साथ जो है ये बहुत बड़ी बात है, परमात्मा ही तो अल्टीमेट है सब कुछ। और आपको धीरे धीरे और समझेंगे कि हमारा एक ही असली रिश्तेदार है, जो हमारा असली रिलेटिव एक ही है बस, हमारा अपना, हम वीरेंद्र के हिसाब से मेरा पूरा फैमिली है, बहुत कुछ है, आप सब भी हैं सब। लेकिन अगर मैं अपने को आत्मा समझता हूं तो आत्मा परमात्मा एक ही हुआ ना। और अब ये ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं और सब लोग हैं, आप सब भी आत्माएं हैं और आप सबका भी आत्मा परमात्मा, तो हम सब भाई भाई हो गए, है कि नहीं, तो हम लोग कितना क्लोज रिलेशन है, हम एक ही घर से, एक ही पिता है हम सबका। तो ये बातें अभी आपको शायद पूरी मन में नहीं जा पा रही होंगी, ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि ये बहुत प्रैक्टिकल है और कितना आसान है। आप सब कुछ करते हुए, ये नहीं मैं इम्प्रैक्टिकल हो गया, डीजीपी हूं तो मैं इम्प्रैक्टिकल है। कई बार लोग ये कहते थे कि सर आप डीजीपी हैं और यहां सिखाते हैं कि अहिंसा सिखाते हैं, डबल अहिंसक। डबल अहिंसक का मतलब है किसी के बारे में गलत ने ऐसा नहीं सोचना, वायलेंट और फिजिकल तो मारना ही नहीं है। तो सर ये स्टेट कैसे कंट्रोल होगा, इतने लोग जो बदमाशी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कैसे होगा? वो मेरा काम है, वो उसमें लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होना है तो ये होगी सजा। और यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो भीड़ इकट्ठी होने पर काम है उनको अरेस्ट करके हटाना। हटाने के अंदर हो सकता है बात बढ़ जाए तो फायरिंग हो जाए, फायरिंग होकर के आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ये मेरा काम है ये। लेकिन फर्क क्या है नॉर्मल इसमें, जब मैं बाबा के साथ हूं और नॉर्मल में, जो पहले था, पहले मैं वेंजेंस करता था। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ना, पता रहे इनको, ताकि ये इनके साथ जन्मे पुश्ते ना कर पाए। ये पर्सनल वो नहीं होगा, ये फर्क आता है आपको। आप अभी भी लॉ ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी है वहां पर। ये नहीं किसी की बहन के साथ कुछ हो, घटना हो गई जी, बोले छोड़ दो, ये क्या मतलब है? वो पकड़ा जाएगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल टेक प्लेस। लेकिन आपके साथ में आप जो है वेंजियंस वाला जो है वो पर्सनल कुछ नहीं है। जब तक वो स्थिति कुछ खराब है कुछ, तो यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो मैं सवेरे ही सोचता था, रोज मेरा काम यही था सोचना। अच्छा, दूसरा भगवान ने मुझे सिखाया कि यहां पर जो सिखाते हैं कि जैसा करेंगे वैसा मिलेगा आपको। तो यहां पर एक और था कि जब मेरे पास 40 जिले थे, तो उसमें कई जगह पे कमिश्नर थे, कई जगह पे सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। तो मैं ये सोचता था कि बंगाल को चलाने का काम मेरा है, पूरे बंगाल की पुलिस को देखभाल करना मेरा काम है, ये जो भी कुछ हो रहा है, और ये लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। एक दूसरा ये सोच सकता था कि भाई ये लोग अपना अपना जिला चला रहे हैं और मैं इनको सुपरवाइज कर रहा हूं। तो दोनों में फर्क क्या है? पहला जब मैं सोचा मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी सहायता कर रहे हैं, तो मैं कृतज्ञता में आ गया, ग्रेटफुलनेस। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप खुश रहते हैं, है ना? आपने मेरे लिए कुछ किया तभी तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा ना आपका। या मैं ये कहूँ तो ये तो काम आप ही का है सर, आप देखें मैं अपनी गलतियां निकालूंगा। तो इससे क्या है कि ये थॉट जो है, ये जिम्मेदारी लेना ये बाबा ने सिखाया। बाबा जो साथ हैं तो इसलिए जिम्मेदारी, मुझे मालूम है मैं कुछ भी जिम्मेदारी ले लूंगा पूरी बाबा करेंगे, मतलब ये भरोसा आ जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि 3.5 साल मैं रहा तो गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ भी हुई, सब कुछ हुआ, लोगों का इंटरप्रिटेशन भी कुछ रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो उसमें नहीं जा रहे हम। इस वक्त मेन पॉइंट ये है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तो ये भरोसा है गड़बड़ हो गई है, तो उस पर चिल्लाने के बजाय, उसको डांटने के बजाय ये पूछना, भाई ये बताओ, अच्छा ये हो गया घटना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। तो वो अब मेरी एबिलिटी क्या है, ये भाई तुमको क्या चाहिए, और फोर्स भेजनी है और तुमको रिसोर्सेज देने हैं, क्या देना है, और तुम शांत रहो, तुम अच्छा कर रहे हो, जबकि वो कुछ गलती कर ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, कर रहे हो, तुम करते रहो। भाई जब रेस चल रही है, घोड़ों की रेस हो रही है, उसमें बीच में थोड़ी जो उसका जो घोड़े का जो साइज होता है उसे क्या कहेंगे, जो घुड़सवार को बीच में बदलते नहीं है, जब रेस चल रही है तो चल रही है, उस टाइम उसे एंकरेज करना है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वरना तो मुझे मालूम है कि ये तो मेरे हाथ में तो नहीं, मेरे ऊपर भी तो लोग हैं, मतलब मेरी पोजीशन भी तो ऐसी है कि हटा दें लोग, बोला नहीं जी आप ना ही रहेंगे, समझ रहे हैं ना? तो उन्हें एंकरेज करना और जिम्मेदारी अपने पे लेना, ठीक है, इट्स ओके, डोंट वरी। तो उससे क्या होता है, आदमी का साहस बहुत बढ़ता है, सारा मनोबल है। हमें सबको नॉर्मल चिंता क्या है, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, सेहत का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, आप नौकरी में हैं, मकान कहाँ बनेगा, कहाँ सेटल होंगे, क्या होगा। अब मैं जैसे रिटायर हो गया, अब मैं रिटायर हूं तो मुझे लगे मैं कहां सेटल होऊंगा, अभी मकान नहीं बना, कलकत्ता में है, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं, वहां नहीं है, लेकिन ठीक है, ये बातें नॉर्मल है। बट मेरा ख्याल से परमात्मा साथ हैं और समय पे मैं वहां चाहता हूं, वो हो जाएगा। धैर्यता, सहनशीलता, ये सब बातें आप में आ जाती हैं। जो परिवर्तन आएगा आपके अंदर आएगा, बाहर कुछ नहीं होगा, सिचुएशन नहीं बदलेगी कोई भी। किसी के घर में कोई बीमार है वो ठीक नहीं हो जाता, ठीक बात है कि हम अपने मन को बदल के उनके पास थॉट करेंगे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, मगर ये नहीं कि आज ही कुछ हो जाए, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये थॉट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पैसे के मामले में, आपके रिलेशंस के मामले में, हर चीज में थॉट बनाए आप, जिस चीज में भी आप समझते हैं और जिसे बाबा को कहेंगे। अब आप देखिए, आप भी माता पिता होंगे, आपका बच्चा आपको कुछ कहे तो हो सकता है कुछ चीजें आप इमीडिएटली ना कर पाए, मगर आपके मन में रहता है कि बच्चे ने कहा है तो हो सकता है कुछ दिन के बाद, या कोशिश करें, काफी हद तक कोशिश करते हैं आप। और परमात्मा को जब मेरे पिता हैं उन्हें मैं कह रहा हूं, तो ये विश्वास है जो है ये आपको बड़ा विश्वास, और ये होता ही है काम, वो कभी छोड़ते नहीं। हाँ, ये मेरे को एक और भी है कि अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो वो इसका मतलब ठीक नहीं है। अब एक बच्चे का गला खराब है, बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, तो क्या माँ उसको आइसक्रीम दे देगी क्या? अगर गले खराब में आइसक्रीम दे दी तो गला और खराब हो जाएगा। इस चीज का मुझे बड़ा फायदा हुआ, अभी जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया कि मैं डीजीपी था वेस्ट बंगाल का, तो वो डीजीपी शिप से मुझे एक रात हटा दिया गया अनसेरेमोनियसली। मैंने एक ऑर्डर हुआ कि आप 10:30 बजे, मुझे ऑर्डर मिला कि आप 9:30 बजे नया डीजीपी ये होंगे, इनको चार्ज दे देना। वो इलेक्शन टाइम था, वो ऐसा होता है उसमें, तो मुझे तुमसे शौक लगा। लेकिन साथ साथ ही, क्योंकि मैं ज्ञान में था, मैं योग कर रहा था पिछले 5-6 साल से, योग वगैरह से जो है यहाँ के बहुत सारे विचार, एक विचार यहाँ ये है कि ये डीजीशिप थी जो मेरे लिए अभी तक अमृत थी, परमपिता ने किया है, ये ड्रामा के डायरेक्टर वो हैं, है ना, ड्रामा चल रहा है कि ये भी पता लगेगा आपको। अभी ये सब बातें हुई नहीं, टाइम बहुत कम है ना आप लोगों के पास, अभी हुआ नहीं है तो। लेकिन अब ये मेरे लिए विश है, क्योंकि पिता है ना मेरे परम पिता, उन्हें मेरा पास्ट भी पता है और मेरा फ्यूचर भी पता है, प्रेजेंट तो पता है, प्रेजेंट तो मुझे भी पता है अपना, तो उन्हें भी पता है, मगर मुझे अपना पास्ट पूरा याद नहीं है। मुझे इस जन्म का तो याद है, लेकिन आत्मा के हिसाब से हजारों साल का मामला है ना, तो सब उन्हें पता है और हजारों साल का उन्हें पता है। तो मेरे मन में जब ये 1-2 मिनट के बाद आया कि भाई ये परम पिता ने किया है और ये मेरे लिए अब तक अमृत थी, अब विषय, तो इस विचार ने मेरे मन को बड़ा खुश कर दिया उस समय, समझ रहे हैं। बड़ा एक शॉकिंग स्टेज हो सकती है, जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अब वही चीज एक सेकंड में ऐसे चली जाए और कोई सेरेमोनियल सेंड ऑफ नहीं रात के अंधकार में चलो जाओ, तो वो जो है खुशी बहन अपनी, तो उसके बाद बाकी जो काम। तो मैं कह रहा हूं ये फर्क पड़ता है आपको, वहां लेने में तो बड़ा आसान है, छोड़ने में आदमी को ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ निकल गया हाथ से। बाबा जी, बाबा साथ है, क्या चीज की कमी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक ही चिंता थी, भगवान मिले, भगवान मिल गया और उसके बाद और क्या, सब कुछ मिलना है। बेस्ट नॉर्मल भी जिंदगी में कहते हैं, बेस्ट इज येट टू कम, जो सबसे अच्छा है वो होने वाला है, और परमात्मा साथ है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, बाकी तो अच्छा ही अच्छा होना है हमेशा। ओम शांति।
सर ने एक बहुत गहरी बात बताई कि वो परमात्मा है जिससे हमारे सारे रिलेशनशिप हैं, और जब ये भान हमारे अंदर आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी परिस्थिति, जीवन में कितनी भी परिस्थिति हो आप उसको सामना कर सकते हैं। और मैं जैसे एक एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिकल है, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कई बार यंग स्टूडेंट होते हैं, तो एक ऐसे ही एक बार एक बच्चे का फोन आया और उसका था कि भैया मैं बाबा को तो याद करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, लेकिन आज मेरी माता जी का ऑपरेशन होने वाला है, उनकी पथरी का ऑपरेशन था, तो मैं सुबह से उनको बहुत बार याद कर रहा हूँ, बार बार परमात्मा की याद आती है, और साथ में एक ये संकल्प ये भी आता है कि मैं मुसीबत के समय परमात्मा को याद कर रहा हूँ, ये गिल्ट भी लगता है। तो फिर मैंने उसको बताया कि संसार में अगर हम आत्मा हैं, हम चेतन शक्ति हैं, तो हमारा सच्चा रिलेशन किसके साथ है, किसके साथ है? अगर मैं चेतन शक्ति हूं तो जो मेरा परमात्मा है उसी के साथ तो है ना, तो उसमें गिल्ट की क्या बात है। यू नो, हम परमात्मा को कभी भी याद कर सकते हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है, उसका सत्य परिचय न होने के कारण, उसके साथ रिलेशनशिप न होने के कारण, इन चीजों के भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में एक शब्द आता है मुरली, यू नो, आप ये जो सारा ज्ञान सुन रहे हैं उसको और डीपली, मुरली आप अगर धीरे धीरे उसके जाएंगे, उस पर सुनने पर जाएंगे, तो जैसे हमारे शरीर के लिए जो भोजन होता है ना, हम सब जानते हैं, यू नो, डॉक्टर डाइट लिखते हैं कौन सी चीज खानी है, क्या करना है, लेकिन आत्मा का भी भोजन होता है संकल्प, मुरली। तो मैं सर से इसी सब्जेक्ट पे और गहराई से समझना चाहेंगे कि सर, जो हम यहाँ मुरली पढ़ते हैं, और अब मैंने देखा है कि आप उस चीज को बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, तो जो मुरली है या जो प्योर थॉट्स होते हैं वो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है।
डीजीपी सर ने बहुत अच्छा समय बांध दिया है मुरली डिस्कस करने के लिए। तो जो मुरली है हमको हर रोज सुबह पूरे जितने भी सेंटर से पूरे वर्ल्ड में हर सेंटर पे एक मुरली चलती है, वो चार पेज की होती है, उसमें भगवान के महावाक्य हैं। आप उसको ये नहीं जाना कि भगवान के, आप इस स्टेज ये भी सवाल मत नहीं लेके आना कि भगवान के हैं कि नहीं है, उसको बाद के लिए छोड़ दो, पहले उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। वो इतने पावरफुल महावाक्य होते हैं हर सुबह। जैसे आज शिवानी बहन का लेक्चर सुना, कैसे लगा? किस किस को लगा कि हम चेंज करें खुद को? सभी। आप ये देखिए, अगर हर रोज आपको सुबह ऐसे महावाक्य मिले क्या होगा? बदल जाएंगे। जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब जैसे सर ने बताओ, ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर, जैसे शिवानी बहन ने लास्ट में जो बताया था, सात सोल की क्वालिटी हो, सारी हमारे अंदर ही है। शांति, आनंद, खुशी, ताकत, सत्यता, मित्रता। और ये जब सारी क्वालिटी जो चार्जिंग है, मान लीजिए 100 अगर फुल चार्जिंग है तो हमारी 5-6 की चार्जिंग है अभी, तो होते भी हमको पता ही नहीं है ये, तो 90% जो डिस्चार्ज हो रखी वहां पर चिंता है, व्यर्थ वो चल रहा है। जैसे चार्ज बैटरी फुल हो जाएगी क्या होगा? चिंता है गायब, व्यर्थ गायब, कैसे होगा, क्यों होगा, बीमार हो गया, पैसे नहीं है, बेटा नहीं पढ़ रहा, पास नहीं हो रहा, सब गायब। तो डेली मुरली जो होती है वो काम करती है हमारी सोल को चार्जिंग करने का। उसमें कुछ महावाक्य जो हम पिछले एक वीक की मुरली को आपके साथ में साझा करता हूं, इसमें भगवान कहते हैं कि भाई आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी व्यक्ति आए, डिफिकल्ट व्यक्ति आए, सबको शुभ भावना और शुभ कामनाएं देनी है। कोई खराब बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, ताना मार रहा है, आपने क्या देना है? कौन सी बॉल? जो आज शिवानी बहन ने बताया था कि वो जो कर रहा है वो उसका कर्म है। मैंने शुभ भावनाएं देनी है, शुभ कामनाएं देनी है, सबको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन ही देने है। एक महावाक्य तकरीबन हर तीसरे दिन आ जाता है ये। दूसरा आता है कि जो आप सोचोगे, जो बाहर हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो यहां हो रहा है सारा बाबा कहते हैं खेल ही सिक्का है। तो आपका चिंतन पूरा दिन शुभ चलना चाहिए। फिर एक बाबा कहते हैं, एक्चुअली हाँ, ये जो ज्ञान है ना यहां का, गीता को कौन कौन मानते हैं? तकरीबन सभी, ये पूरी संसार ने माना है, ना सिर्फ हमने, पूरे संसार के जो ह्यूमैनिटी ने माना है कि गीता आध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये क्रिश्चियन भी मानते हैं, बिकॉज जिसने जो स्पिरिचुअलिटी में चल रहा है उनको सबको पता है गीता पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है आध्यात्म के ऊपर, ह्यूमन सोल की जर्नी के ऊपर। जो गीता में है, जो यहां पर महावाक्य है, एक बिंदु का भी अंतर नहीं है, डॉट का भी। सिर्फ ये अंतर है कि यहां पर उनको इतनी सरल भाषा में बताया जाता है कि उसके ऊपर हम चल सकते हैं। एक गीता में आता है, जो हुआ जो हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा, उसमें लग जाता है और भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये सेम चीज बाबा कहते हैं, जो भी जब भी हमारे लाइफ में कुछ परिस्थितियां आती हैं, जैसे अगेन शिवानी बहन ने जो बताया कि परिस्थितियां आती है, समस्या आती है, वो समस्या नहीं है, वो बॉल वापस आ रही है। वो कौन सी? जो हमने फेंकी थी। वो जब अभी आ रही है वापस समस्याओं के तौर पे, वो अभी अगर हम ये रहेंगे अच्छा हो रहा है ये, तो कैसी बॉल जा रही है? अच्छी जा रही है। तो एक तो आपने अच्छी बॉल फेंकी तो अच्छा होना ही होना है। दूसरा, वो जो बॉल आई थी वो आपका कार्मिक अकाउंट था, आपका जो वो कर्ज था वो सेटल हो रहा है, जो लोन था आपका नेगेटिव सेटल हो रहा है, दूसरा फायदा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी क्यों लगाया? एक तो आप बॉल अच्छी फेंक रहे हैं अभी, दूसरा वो जो नेगेटिव सिचुएशन आई है, जो नेगेटिव परिस्थिति आई है, नेगेटिव इंसान को आया है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट था। जो अगर मान लिया 100 नेगेटिव थे मेरे, 100 का कर्जा था, वो घट के अभी 90-70 ऐसे, जितना वो कर्जा कम होता जाएगा आत्मा हल्की होती जाएगी। तो हर रोज ये मुरली में महावाक्य आते हैं, हर रोज आते हैं। फिर एक मुरली में महावाक्य आता है कि तुम एक कदम बढ़ाकर देख, हिम्मत का मैं हजार कदम बढ़ाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण ये तो आज हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो डीजीपी सर, कर्नल साहब, सैलेंदर, एक को भी आप 10 घंटे दे दोगे ना, 10 घंटे यहां अनुभव रुकेंगे नहीं, इतने अनुभव सबके बाबा की मदद के। हर रोज सिचुएशन आती है, हर रोज बाबा कहां हो आ जाओ संभाल लेते हैं। फिर एक बाबा हर रोज मुरली तकरीबन नगर मुरली बार बार कहते हैं कि तुम करण करण करावनहार मैं हूं, तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम अपने कंधे पे मत लेके चलोगे, तुम करोगे फिर कोई चीज होगी, तुम मेरे ऊपर पूरा सौंप दो फिर अपना काम करो। जैसे हम उसको पूरा सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, गीता में वही कहा है बाय द वे, गीता अगर आप पढ़ोगे गीता में सेम चीज की कृष्ण ने, तो जितना हम उसके ऊपर छोड़ के चलते हैं फिर वो जिम्मेदारी वो संभाल लेता है। वो जिस चीज को संभाल लेगा कैसी होगी? अमेजिंग होगी। सबसे एक चीज जो मैं बहुत आपके साथ साझा करना जरूरी समझता हूं, ये आध्यात्म है। अगर हम अपनी लाइफ में आध्यात्म के चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें तो आध्यात्म में हमको नजर आएगा गुरु नानक, ये हमारे सिखों गुरु, मैं सिख रेजिमेंट से हूं, या कबीर, सूरदास, मीराबाई या विवेकानंद, वही लोग नजर आएंगे जो एक जो फंक्शनल वर्ल्डली लाइफ थी उससे दूर जाकर और फिर आध्यात्म में तरक्की की है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी जॉब में हो, जिस भी बिजनेस में हो, वो 10 गुना अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका काम करने का तरीका 10 गुना अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं टाइम कम है, मैं अगर जैसे मैं 30 साल पहले ज्ञान में आया था तो अगर एक चीज तो आप सब माने, अगर ज्ञान में आप आगे हो फिर आपको वर्ल्डली चीजें नहीं आकर्षित करेंगे, मेरे को रैंक मिल जाए, मेरे को अवार्ड मिल जाए, मेरे को फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए, यह चीज आकर्षित करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। तो जितना ही इनकी तरफ से मन हटा, बाबा की याद में रहे, बाबा की स्मृति पर चले, वो इतना देता चला गया सोच नहीं सकते। तो ये सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप जब उसके साथ जुड़ते हो तो आप जो मेन लाइफ है, सांसारिक दुनिया है, उससे आप अलग नहीं कहीं जा रहे हो। आदों को वो भी एक चिंतन चलता है ना कि यार इसमें चल के मैं कहीं थोड़ा सा फिर मतलब समाज से ना अलग हो जाऊं, लोग तो और ही चले पड़े हैं। अब उन्हीं लोगों के बीच में रह के उनसे 21 नहीं उनसे अब 42 हो जाएंगे हर चीज में। तो अब एक एक दो मिनट में सुनाता हूं मैं बता, मैं ज्ञान में आगे कैप्टन के तौर पर, उसके बाद मेरा कोई करियर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा कोई प्रमोशन कौन आई हो मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं था, मैं अपना काम कर रहा था। उसके साथ साथ बाबा ने मेरे को, जैसे जो यूएन मिशन होता है तो यूएन मिशन में हर एक ऑफिसर का होता है कि यूएन मिशन में कंट्री अपने बेस्ट ऑफिसर को भेजता है एम्बेसडर बना के मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर, तो भेजे। मेरी ऐसी कोई इच्छा भी कभी नहीं थी कि उस तरफ मनी नहीं है। जो यूएन मिशन में जहां सबसे कम वैकेंसी, सबसे प्रेस्टिजियस है, बाबा ने वहां पर यूएन मिशन में आपको मिलिट्री ऑफिसर बना के भेज दिया। वहां भेजा तो वहां जिस टीम साइट में थे वहां पर 50 देशों के मिलिट्री ऑब्जर्वर थे, कनाडा का, जर्मनी का, चाइना का, रशिया का, हर कंट्री, पूरे वर्ल्ड के जो मेन मेन कंट्री सबके मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। उस टीम साइट पर एक सारे मिलिट्री ऑब्जर्वर का एक टीम लीडर बनना है अभी, जो उनका सीईओ एक प्रकार से, जो सबको टास्किंग करेगा, वो हैंडल करेगा। बाबा ने वो टीम लीडर बना दिया। कैसे देता है वो? जब मैं देखो, मैं तो जो बाकी अपने आसपास के अफसरों को देखता हूं, मेरे से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं करियर में, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं सभी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से चल रहा हूं बिल्कुल शांति में, मस्ती में। तो आप जिस भी लाइफ में आप देखेंगे जब बाबा जो के साथ जुड़ेंगे वो आपको मालामाल कर देगा। वो मतलब ये आध्यात्म में जो हम सोचते ही नहीं कभी, आध्यात्म में सोचते शांति मिले, सुख मिले, हमारा फोकस वही होता है, लेकिन वो जो इस संसार में चाहिए वो भी जितना सोच सकते हो उसको आपको 1000 गुना दे देगा। तो जो सर ने कहा उस पर मैं समाप्त करता हूं, आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो जुड़ने का हमको ये माध्यम मिला है। थैंक यू एंड ओम शांति।
अगर आपके मन में भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं सर से पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब से फिनिश करना चाहूंगा। है 5 मिनट है तो सर, आपको हमेशा देखते हैं हर्षित मुख, उमंग उत्साह। आपने देखा होगा रात के 12 बजे भी एकदम एकोमोडेशन दे रहे हैं। ये केवल यहाँ की बात नहीं, सर को बाहर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। यू नो, मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट होने के बाद सर और ज्यादा बिजी हो गए। तो एक तो आपके चेहरे की चमक, और दूसरा आप जो सर इतना फिट रहते हैं, अभी भी आप हमें एकदम यंग दिखते हैं सर, इसका सीक्रेट आप बता दीजिए।
ओम शांति। एक्चुअली ये बोलते ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज, तो इनकी आंखें इतनी अच्छी है कि हम अच्छे दिखते हैं। अब ये यहाँ रहते हैं इतने अच्छे वातावरण में, ये नीचे थोड़े रहते दुनिया में, है ना, इनको क्या मालूम, है ना। लेकिन ये
सर, आप दुनिया में रहते हैं लेकिन बिल्कुल सच में चमकते हुए स्माइली।
तो आपको मतलब देखिए, ये जो मतलब यहाँ की जो सीख है ना, यहाँ की जो सबसे बड़ी चीज है, हमने यहाँ पे उसको अपना बना लिया जो मतलब जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो वो हमारे बन गए, तो अब और कुछ चाहिए नहीं। सर ने ये बताया, और वो ऐसा काम करता है ना कि जो आप नहीं सोच सकते। मतलब बहुत सारे पर्सनल अनुभव, मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा मेरे मतलब पर्सनल है बहुत। मेरे बड़े भाई के साथ मैं पढ़ता था, उनके साथ रह के उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया 5 साल। और मतलब होता है ना, बड़ा भाई बाप समान जैसा, तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरी सारी कमियों को भी। भाई बड़ा भाई देखता है, छुपाता है और चलाता है, भाई देता है, पूरा सपोर्ट करता है। फिर हम कमीशन हो गए, बन गए, और हमें भगवान ने पकड़ लिया, अपना बना लिया। तो अपने आप वो सारी चीजें छूटती गई, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज जो यहां होती है कि जो व्यर्थ है वो खत्म हो जाता है हमारे जीवन में से। तो बचता क्या, जब व्यर्थ है वही बेकार है, तो वो सब खत्म हो गया, तो जो बचा वो सारा कुछ जमा होता है। तो मेरे बड़े भैया को पता था कि मेरा कुछ खर्चा वगैरह कुछ होता नहीं है, जो जमा हो रहा है वो जमा हो रहा है। तो लेकिन कभी कभी क्या है, सबका जीवन में संघर्ष आता है, एक टेस्ट होता है। तो बड़े भैया के भी जीवन में एक संघर्ष आया। उन्हें मैं हमेशा बताता था कि भाई ये भी एक बहुत अच्छा मार्ग है, आप कभी आओ, और दुनिया का समय भी आप देख रहे हो कैसा है। तो उनका अलग इस बात पे वो है नजरिया, तो मेरी बात को ऐसे कभी सुनते थे कभी। लेकिन मेरी इस सोच पे बहुत उनको रिस्पेक्ट था कि वो बोलते थे वेरी गुड, आप इस रास्ते पे हो, और उसका सम्मान करते थे। 2020 से पहले की बात है, बड़े भैया के मन में एक विचार आया कि भाई मुझे अब अपना कुछ करना चाहिए। वो बैंगलोर में रहते हैं और वो अपना चाहते थे कि भाई हम अपना कुछ ऐसा बिजनेस सेट करें, क्योंकि हमें तो इनकी तरह पेंशन नहीं मिलेगी, सर्विसेज की तरह इनको तो मिलती है पेंशन भाई। तो उन्होंने अपना क्या किया, एक स्कूल खोलने का प्लान किया, और बहुत बड़ा स्कूल बैंगलोर में मतलब फ्रेंचाइजी स्कूल खोलने का उन्होंने प्लान किया। मुझे फोन किया, मेरे को मैसेज भेजा कि आपसे मेरे को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं लोन वगैरह भी ले रहा हूं, मेरे को थोड़ा फंड्स में कमी है, तो प्लीज कुछ हेल्प करना। तो मैंने एक मैसेज लिख के उनको भेजा कि भैया भगवान ने मना किया है। ये जैसे आर्मी फोर्सेज में होता है ना, हमें लेन देन का मना होता है, पैसे का ट्रांजेक्शन मना होता है। तो मैंने उनको भेजा, तो और मैंने साथ में ये भी बोला कि आप थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि इस समय में ये चीज एडवाइजेबल नहीं है एकदम से आप सर्विस से बिजनेस में जाएं। तो और भैया ने बड़ा पॉजिटिव लिया, उसने बोला मैं समझता हूं, लेकिन मैं अब अपने इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ चुका हूं, काफी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और जैसा मतलब मेरे को अंदेशा था और जिससे भगवान का भी इशारा है, और वही हुआ, कोरोना आ गया, सब कुछ बंद 2 साल, सारा कुछ उन्होंने बिल्डिंग्स किराए पे ली थी, फर्नीचर किराए पे लिया था, सारा फंड्स उनके एकदम एक तरह से सूख गए, और काफी मुसीबत में आ गए फाइनेंशियली। और कोरोना के फर्स्ट फेज के बाद उनको फिर से उनका मैसेज आया कि मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, बट मैंने फिर वही मैसेज भेजा उन्हें कि हमें निर्देश है, बट मैंने उनको ये भी कहा कि भैया मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा, उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा अपनी तरफ से। और मैंने ऐसा बोल के बाबा को अर्जी लगा दी कि बाबा थोड़ा देखना, और मैं तब तक मैं आर्मी से रिलीज भी हो गया था, मेरा प्रीमैच्योर रिटायरमेंट हो गया था, तो मैं बहुत खुशी से माउंट आबू आया। और माउंट आबू में आया तो दीपक भाई ने, अगले दिन जब मैं जा रहा था वापस, मैं बाबा का थैंक्स करने आया था, तो बाबा के रूम में बैठ के थैंक्स किया, और दीपक भाई ने बोला विकास भाई कल सुबह मुरली क्लास के बाद आपको ना एक गीत गाना बाबा का। मैंने बोला ठीक है भाई जी। हाँ गाने वाले को तो स्टेज चाहिए क्योंकि हम तो बाथरूम सिंगर थे। तो बाबा का गीत सुबह कार्यक्रम के बाद हमने गाया था, तो वहां पे एक बहुत ही बड़े उद्योगपति बैठे थे जो कि स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं मुंबई में, और उनका सारा स्टील एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर। और वो प्रोग्राम के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि कर्नल साहब आप क्या कर रहे हो, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए, मैंने बोला भाई साहब मैंने छुट्टी ली है सेवा करने के लिए आपको, मैं नौकरी करनी थी तो मैं फौज की नौकरी अच्छी भली कर रहा था। मैंने उनको थैंक्स बोला, बोलते नहीं नहीं मैं तेरी सुनूंगा नहीं, तुम अपना नंबर दो। फिर उन्होंने मेरा नंबर वंबर लिया, मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जबलपुर आ गया अगले दिन, मतलब उसी दिन ट्रेन थी, जाके जबलपुर गया। रात में भोजन कर रहा था तो मैंने वाइफ को बताया कि पता है मुझे बहुत बड़े उद्योगपति मिले थे, उनने ऐसा ऑफर दिया था। तो मेरी वाइफ ने उनने मेरे को याद दिलाया, बोलते आपने बड़े भैया की बात करनी थी। अरे मैंने बोला यार इतनी अकल तो हमें है नहीं। तो मैंने उसी समय अपने बड़े भैया को फोन लगाया और उनसे बात की। उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है एंड मेरे को अभी जरूरत है। तो ऑनलाइन उनका सारा उसी समय इंटरव्यू सेट हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर उनका इंटरव्यू हुआ। और आज भैया उनकी कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है एंड बहुत ही बढ़िया पोजिशन पे है। तो मतलब जो हम नहीं कर सकते थे, मैं मदद नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी में नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा वो था, बोझ था कि मैंने उस भाई की मदद नहीं की जिसने मेरे को बाप समान बनकर पाला है। लेकिन भगवान ऐसा है ना कि सब कुछ सुन लेता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
अगर आप किसी में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ अगर है ऐसे तो, अदरवाइज हमारा टाइम हो गया है। तो फिर हम आज के इस सेशन को यहीं पे संपन्न करते हैं। यस सर प्लीज।
गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ अजय सिंह राजावत मास्टर पीएलपी फ्रॉम विशाखापट्टनम यूनिट एनएस बीरबाऊ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे फादर ही मुझे बोलते हैं कि जैसे मैं बोला कि ये फास्ट कर लें, बोले नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम फौज में हो, तुम्हारा एक्सक्यूज है अभी। लेकिन अभी यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग ही माहौल मिल रहा है कि नहीं आप ये भी करो ये भी करो। तो मतलब सर ये क्या है, मतलब आप मोटिवेट कर रहे हैं या फिर
जैसे, अच्छा सवाल है राजावत, जैसे बता के जो आपकी प्रेजेंट जॉब है उसको करने की काबिलियत आपके 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं साउथ कश्मीर में जब टेररिज्म पीक पे था 2017-18 तब एज ए राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांडर साउथ कश्मीर देख रहा था। जो रिजल्ट उस सेक्टर ने निकाले वो आज तक कश्मीर का रिकॉर्ड है। तो पूरी फौज को था इस सेक्टर में इतने कैसे रिजल्ट निकाला हुआ टेरिस को मारना। और ऐसे मौके होते थे जहां पर वो टेरिस को बड़ा है उसको परिवार वाला आ गया उसको बचाने के लिए, ऊपर से भी चलो सरेंडर करना चाहता उसको सरेंडर करने देना। लेकिन मेरे को ये पता था कि इसको छोड़ दिया ये बहुत फिर कंफ्यूजन होएगा। तो कई ऐसे डिसीजन थे जो मारने के मैंने डिसीजन लिए कि नहीं मारेंगे इसको। तो आप ये मत सोचिए कि अगर हम शिव बाबा ओम शांति कर रहे हैं तो वहां डिले पड़ जाएंगे। और जब टेरिस्ट को मारते थे तो आप ये मान लीजिए एक मिट्टी का खिलौना टूट गया तो उसमें शायद खराब लग सकता है कि खिलौना कैसे टूट गया, अच्छा खिलौना था। वहां टेरिस्ट को मारते टाइम एक MMB फीलिंग आती है, यू ओनली फील गुड कि आपने जो ड्यूटी मिली उसको अच्छे से आपने निभाया। तो आपका जो भी टास्क मिला आपको उसको आप 10 गुना बेटर परफॉर्म कर पाओगे अगर इसी में चलेंगे। आई होप दैट आंसर्स।
तो एक बार फिर हम, यस मैम जी, तो बहुत सुंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो तीनों महान जिन्होंने हमें अनुभव सुनाया उनके लिए एक बार जोरदार थालियां उनके लिए। और हम विकास सर से अनुरोध करेंगे कि जो मेडिटेशन है हम उनके भजन के साथ उनके गीत के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आज के इस सेशन को पूरा करेंगे।
मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को, इसके बाद कोई सेशन तो नहीं है सर, इसके बाद ये इसके बाद लंच है। अच्छा तब तो फिर योग तो फिर भोजन से है, इधर क्या योग लगेगा। हाँ लगेगा योग पक्का। अच्छा ठीक है, नहीं तो अच्छा भाई जी पल पल। चलिए हम लोग सभी बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं, जैसे आप अब तक याद करते हैं। जैसे सर ने बताया ना कि कुछ बदलना नहीं है, पिता वही है जिस तरह से आप याद करते हैं, सिर्फ आज हमें उनका पता लग गया है, वो मेरा पिता है, मेरा बाबा है, शिव बाबा है। ये मेरे दिल का अनुभव का गीत है, तो हम सभी उसमें याद करेंगे। चलिए जब तक ट्रैक नहीं मिल रहा है तब तक अपने मन को एक सेकंड में बाकी दुनिया की सारी बातों से दूर करते हुए अपने आप को आत्मा महसूस करें। निश्चय करें मैं एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीचों बीच परमात्मा की नैनों का नूर हूं। आज तक उस प्यारे पिता से मैं दूर था, आज मैं अपने घर में आया हूं। उसकी नजरों के सामने तो महसूस करें कि परमात्मा की नजर मुझ पर पड़ी है, और अपने आप को मस्तक के बीच में देखें। मेरी खुशी, मेरे मन की शांति बढ़ रही है। पिछली सारी बातें, सारे बोझ परमात्मा ने हर लिए हैं। मैं बिल्कुल हल्का नन्हा सा बच्चा, सारे बोझ अपने पिता को देकर अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। अब अपने आप को एक सेकंड में देखें कि परम धाम में परम पिता परमात्मा निराकार शिव सर्वशक्तिवान प्यार के सागर पतित पावन और मैं आत्मा उनका बच्चा अपने हर पल को महसूस करते हुए कैसे उन्होंने मेरा एक एक पल सुहाना बना दिया है जीवन का। अब अपने दिल के भाव को इस गीत के साथ पल पल हुए सुहाने प्रभु या आनंद के एहसास से
प्रभु याद में तुम्हारे आनंद के एहसास से ओम शांति।